पृष्ठ संख्या 75। और पुरुष चार भी कहता है, फिर भी तुम्हें लगता रहा है कि तुम चुनाव कर सकती हो, लेकिन क्या सचमुच कोई चुनाव नजर आया है तुम्हें? यह असफलता उसके स्वभाव को और अधिक क्रूर, कटु और तीखा बना देती है, बड़ा ही प्रतिक्रियात्मक और कहीं-कहीं बड़ा आक्रामक भी। फिर भी उसे परिवार की आर्थिक समस्या सुलझानी ही है। अपने बेकार बेटे अशोक की नौकरी लगाने के लिए सिंघानिया के आगे गिड़गिड़ाता ही है, लेकिन यह सहानुभूति भी उसे नहीं मिल पाती। पति के साथ साथ बेटा अशोक भी उसका तिरस्कार करता है। मुझे नहीं चाहिए नौकरी, कम से कम उस आदमी के जरिए हरगिज नहीं। और उसे लगता है कि ये लोग हैं जिनके लिए मैं जान मारी करता हूँ दिन रात। और अंत में जगमोहन के साथ नया जीवन बिताने का निश्चय कर लेती है, लेकिन सफल नहीं होती। घर लौटने पर जुनेजा मिलता है जो उसके स्वार्थ को खोल देता है, और यह जानते हुए भी कि मुझे भी अपने पास उस मोहरे की बिल्कुल बिल्कुल जरूरत नहीं है, जो न खुद चलता है न किसी और को चलने देता है। वह उसी निकम्मे पति के साथ जीवन बिताने के लिए विवश हताश भी दिखाई देती है। दूसरी ओर महेंद्र भी अपने को निरंतर अपमानित महसूस करता है, जैसे दबकर नहीं रहना चाहता, चाहते हुए भी अपनी तटस्थता बनाए रखने में अपने को असमर्थ पाता है, और इसीलिए कभी-कभी एकदम ऊंचे स्वर में कहता है, कितने साल हो चुके हैं मुझे जिंदगी का भार ढोते, उसमें से कितने साल बीते हैं मेरे इस परिवार की देख रेख करते, और उस सब के बाद मैं आज पहुंचा कहाँ हूँ। यहाँ की जिसे देखो वही मुझसे उल्टे ढंग से बात करता है, जिसे देखो वही मुझसे बदतमीजी से पेश आता है, और बार बार उस वातावरण से, पत्नी से भागने के लिए अपने को मजबूर पाता है। हर मंगल शनिचर को यही सब होता है यहाँ, लेकिन उसके मन की दुर्बलता भी है। शायद वह सावित्री को इतना चाहता है, उस पर इतना निर्भर है कि हर बार जाकर वापस लौट आता है। मतलब दोनों ही आधे अधूरे हैं, क्योंकि दोनों को किसी भिन्न व्यक्ति की तलाश है। मजबूरी यह है कि दोनों में उस तरह का एडजस्टमेंट नहीं है जो दोनों की अपूर्णता को कम करे, बल्कि दोनों का परस्पर व्यवहार उस तल्खी को, उस अधूरेपन के एहसास को और अधिक बढ़ाता रहता है। यही नहीं, दोनों इस सीमा तक अधूरे हैं, विवश हैं, कि हर बार प्रयत्न करने पर भी, चाहने पर भी एक दूसरे से संबंध विच्छेद नहीं कर पाते, और उसी माहौल में जिंदगी काटते हैं। नाटक स्त्री की हताशा और पुरुष की आश्रय या आधार की खोज की कामना पर समाप्त होता है। पति पत्नी के बीच की यह दरार घर के वातावरण को भी निरंतर तोड़ती रहती है। उन दोनों का आपसी व्यवहार, नफरत और कलह बच्चों के मन मस्तिष्क को बराबर प्रभावित करती है। उनकी मानसिकता व्यवहार उसी के असर से ढलती जाती हैं। सब एक दूसरे से कटे हुए हैं, और कटे ही नहीं, एक दूसरे को सहन कर पाना भी उनके लिए असंभव है। इसीलिए वे हमेशा विषाक्त वाक्य प्रयोग करते हैं। पृष्ठ संख्या 76। तनाव में रहते हैं और चिढ़ और कूढ़न में बोलते हैं। बड़ी लड़की बिन्नी अपनी ही माँ के प्रेमी मनोज के साथ घर से भाग जाती है और विवाह कर लेती है, लेकिन संतुष्ट नहीं है। लगता है जैसे उन दोनों की छोटी-छोटी बातें अड़चने बनती जा रही हों, और मन के अंदर एक गुबार सा भरा रहता हो। ऐसा क्यों है वह स्वयं नहीं जानती। वजह सिर्फ वह हवा है जो हम दोनों के बीच से गुजरती है, विवाहित जीवन में कोई आत्मीयता उसे दिखाई नहीं दी और इसीलिए एक प्रश्न उसके दिमाग में पैदा होता है कि ऐसा भी होता है क्या कि दो आदमी जितना ज्यादा साथ रहें, एक हवा में सांस लें, उतना ही ज्यादा अपने को एक दूसरे से अजनबी महसूस करें। सिर्फ इतना वह अवश्य समझती है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। घर किसी को घर नहीं लगता, शायद इस अपने घर की अनुभूति न होने से ही मनोज की सहानुभूति जैसे ही उसे मिली, वह निकल भागी। हालांकि वहां जाकर भी वह सहज नहीं हो पाई और उसकी जिंदगी भी सवालों, उलझनों और प्रतिक्रियावादी दृष्टि से घिर कर रह गई। बेटा अशोक अपने पिता की तरह ही बेकार है। नौकरी में किसी गंभीर काम में उसका मन नहीं लगता। उन सब लोगों से उसे गहरी वितृष्णा है, चिढ़ है, जिनके जरिए माँ उसे नौकरी दिलाना चाहती है। इसीलिए वह कहता है, तुम्हारा बॉस ना होता तो उस दिन मैंने कान से पकड़ कर घर से निकाल दिया होता। 5,000 तनख्वाह पाने वाला बॉस हुआ तो क्या, आदमी तो लगता नहीं, न बैठने का शऊर है, न बात करने का। ऐसा भी नहीं है कि जिंदगी भर वह कुछ भी नहीं करना चाहता, लेकिन जिस चीज में अंदर से उसकी दिलचस्पी नहीं है वह नहीं कर सकता। इसीलिए उसका खाली समय या तो दिन भर ऊघने में बीतता है या पत्रिकाओं से अभिनेत्रियों की तस्वीर काटने और उन्हें दीवारों पर चिपकाने में। नाटक के शुरू होने में ही उसकी माँ कहती है, और अशोक बाबू यह कमाई करते रहे हैं दिन भर। एलिजाबेथ टेलर, आर्ड्रे हर्बन, शर्ले मैकलेन जिंदगी काट रहे हैं इन तस्वीरों के साथ। वह यही समझता है कि बड़ी बहन बिन्नी ने प्रेम के कारण घर नहीं छोड़ा, बल्कि इस बहाने मानो उसने इस घुटन भरे माहौल से छुटकारा पाया है। तू चली गई है यहाँ से, मैं तो अभी भी यही रहता हूँ। घर के दबे घुटे वातावरण की साक्षी 13 वर्ष की छोटी लड़की किन्नी बड़ी विद्रोही और व्यवहार में अशिष्ट है, जिद्दी और झगड़ालू भी। माँ, पिता, भाई, बहन, किसी से उसे कोई लगाव नहीं, हमेशा एक कड़वाहट। स्कूल में भूख लगे तो कोई पैसा नहीं होता पास में, और घर आने पर घंटा घंटा दूध ही नहीं होता गरम, या मेरी बात सुनी ही नहीं किसी ने। अंदर मेरे बाल खींच रहा था और बाहर आकर अपनी फ्रेंच कट बता रहा है। अंदर जाओ तो बाल खींचे जाते हैं, बाहर आओ तो किट पिट किट पिट, और खाने को कोयला। अब उधर आकर इनके तमाचे और खाने हैं। अपने चिड़चिड़े स्वभाव में वह अपनी हर छोटी से छोटी जरूरत की पूर्ति चाहती है, और एकदम व्यवहारिक शिष्टता को भुलाकर कैंची की तरह जुबान चलाती है। इतना ही नहीं, अपनी आयु से पहले ही वह यौन किस्सों में, तस्वीरों में, गंदी पुस्तकों में रस लेने लगती है। पृष्ठ संख्या 77। जिसके लिए अक्सर उसे डांट पड़ती है, लेकिन उसका व्यवहार और बदमिजाजी बढ़ती ही जाती है, क्योंकि बाहर लोग बहुत सी बुरी बुरी बातें कहते हैं। पूरे घर को ले लेकर पिता की बेकारी, भाई की दूसरी दिलचस्पियां और बेकारी, माँ का पुरुष मित्रों के साथ मिलना, बड़ी बहन का घर से भाग जाना, ये सब कारण हैं जो उसे बाहरी लोगों से घृणित बातें सुनवाते हैं। और तब वह आकर रोती है, लड़ती है, ताव में, गुस्से में बड़ी बहन को भी धकेलती है और विद्रोह भाव से कुर्सी पर जम जाती है। ऐसे में कोई अगर उसे समझाने की कोशिश भी करता है तो वह और भड़क उठती है। हाँ, बड़े हो गए हैं हम, पता नहीं किस वक्त बड़े हो जाते हैं। सचमुच यह नाटक आज के जीवन की मौजूदा विडंबना को, स्थिति को सामने लाता है। व्यापक दृष्टि से इसे टूटते बिखरते बिगड़ते उलझते मानवीय संबंधों की जटिलता का नाटक कह सकते हैं, जहां हर व्यक्ति अपूर्ण है और संपूर्णता की खोज में भटक रहा है, लेकिन उस संपूर्णता को और साथ ही उस आत्मीयता को पाना सभी के लिए मुश्किल है, क्योंकि बहुत पहले ही कहा जाता रहा है कि संपूर्णता कभी प्राप्त नहीं होती। वह आषाढ़ का एक दिन के कालिदास मल्लिका विलोम को भी नहीं मिली, लहरों के राजहंस के नंद और सुंदरी को भी नहीं, और आधे अधूरे के पात्रों को भी नहीं। संपूर्णता की कामना और तलाश ही इस अधूरे संसार में संभवतः व्यर्थ है। यूं अगर इस नाटक की पूरी अर्थवत्ता को पहचानना चाहते हैं, तो उसे कई स्तरों पर देखना होगा। सामान्य तौर पर देखे तो यह नाटक स्त्री पुरुष के आपसी संबंधों का नाटक भी है, उनके बीच के लगाव और तनाव का दस्तावेज। महेंद्रनाथ सावित्री से असंतुष्ट और शायद बहुत से मामलों में असहमत होते हुए भी उसे बहुत प्रेम करता है। हालांकि यह बात नाटक में उसके व्यवहार में कहीं सामने नहीं आती, केवल हर बार घर वापस लौट आने से और अंत में जुनेजा की बातों से। फिर भी कहता हूँ कि वह इसे बहुत प्यार करता है। कोई समझा सकता है उसे? वह इस औरत को इतना चाहता है अंदर से, कि सावित्री ने महेंद्रनाथ को जितना ही निकट से जाना है, उसे वितृष्णा होती गई है। वह उसे लिजलिजा चिपचिपा सा आदमी लगता गया, जिसका जिम्मेदार वह दूसरों को मानती है, महेंद्र के माता पिता को, दोस्तों को। उसकी बेकारी से वह और ज्यादा कटु होती चली जाती है। अपनी आंतरिक आकांक्षा की पूर्ति के लिए वह अलग अलग पुरुषों के पास जाती है, लेकिन भारतीय समाज में पुरुष स्त्री से सहज संबंध रख ही नहीं पाता। सबका अपना अपना स्वार्थ स्त्री को और अधिक तीखा और अंदर से टूटा हुआ बनाता चलता है। स्त्री पुरुष के संबंधों के तनाव को दूसरी ओर बिन्नी और मनोज के माध्यम से भी सांकेतिक रूप में दिखाया गया है। बिन्नी और मनोज सावित्री और महेंद्रनाथ के जीवन की विडंबना का ही एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। कहना ना होगा कि यह ऐसा विषय है जो राकेश के साहित्य में बार बार आया है। पृष्ठ संख्या 78। अंधेरे बंद कमरे और अंतराल उपन्यास में आषाढ़ का एक दिन से लेकर बीज नाटकों तक स्त्री पुरुष के परस्पर संबंधों की विषमता और जटिलता स्पष्ट देखी जा सकती है। आधे अधूरे में वह जटिलता बहुत गहन स्तर पर न आ सकी हो, यह बात और है। पति पत्नी के बीच की ऊब, घुटन, तनाव और बढ़ती जाती दूरी के पूरे संकेत नाटक में मिलते हैं, और यह भी कि किस तरह सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए संबंधों को ढोया जाता है, खासकर पति पत्नी के संबंध को 22 साल की लंबी जिंदगी लड़ते पीटते रोते काटी जाती है। दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे से मुक्त नहीं हो पाते। पुरुष अपनी आंतरिक व्यवस्था के कारण और स्त्री उपयुक्त पुरुष न पाने के कारण, या शायद सामाजिक व्यवस्था के कारण, भारतीय समाज की जैसी व्यवस्था है, उसमें स्त्री चाहे भी तो अपने स्वतंत्र नए जीवन का आरंभ नहीं कर सकती। स्त्री पुरुष और दाम्पत्य संबंधों के इस खोखलेपन के साथ साथ पारिवारिक विघटन के भी संकेत नाटक में हैं, और बहुत सुंदरता से प्रस्तुत किए गए हैं। पूरा परिवार अभिशाप ग्रस्त जैसा लगता है। परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से कटा हुआ है। सबके मन के अंदर जहर ही जहर है। उसी विषाक्त वातावरण में सांस लेना उनकी मजबूरी है। हर सदस्य एक मौके की खोज में निकल भागने के अवसर की तलाश में। बच्चों का व्यक्तित्व और दिल दिमाग उसी वातावरण और व्यवहार के अनुसार बनता जा रहा है। माता पिता के प्रिय आत्मीय संबंध न होने पर उनकी रोज रोज की गाली गलौज, मारपीट, कटुता, अलगाव देखते रहने पर परिवार के अन्य सदस्य, बच्चे किस तरह गलत राह पर जाते हैं, उनके स्वभाव व्यवहार दृष्टि में कितना परिवर्तन आ जाता है, इसका अच्छा चित्र सामने आता है। किसी को भी उस घर में अपने घर की अनुभूति नहीं होती। स्त्री नौकरी के बाद घर में घुसते ही अव्यवस्था, बिखराव, अस्त व्यस्तता और अकेलापन महसूस करती है। बड़ी बेटी बिन्नी कहती है, कहाँ छिपी है वह मनहूस चीज जो वह कहता है कि मैं इस घर से अपने अंदर लेकर गई हूँ। मैं तो इतनी बेगानी महसूस करती हूँ इस घर में कि छोटी बेटी किन्नी भी घर को अकेला पाती है। घर पर है भी कोई जिसके पास बैठती यहाँ। बेटा अशोक भी कड़वाहट से कहता है, इसे घर कहती हो तुम, मैं खुद अपने को बेगाना महसूस करता हूँ यहाँ। इस बेगानेपन के बीच जीना ही सबकी मजबूरी है। राकेश की दृष्टि में यह बेगानापन महसूस होना एक परिवार की नियति नहीं है, यह आज की दुनिया में हर व्यक्ति की अनुभूति है। यही उसकी त्रासदी है जो उसके जीवन को बड़ा कटु और करुण बनाती जा रही है। लेकिन आदमी को इस त्रासदी को अंततः झेलना ही है। सारी कटुता और तनाव के बावजूद जिंदगी एक ढर्री पर चलती रहती है। कई बार कटने पर भी बार बार फिर वहीं लौट आती है। इस स्तर पर यह नाटक मानवीय स्थिति की क्रूरता को भी सांकेतिक ढंग से चित्रित करता है। मानवीय असंतोष अधूरेपन को रेखांकित करता है। जीवन में जो मनुष्य भी बहुत कुछ प्राप्त करना चाहता है, सफल नहीं होता। संतोष और तृप्ति अपूर्ण रह जाती है। सावित्री का जीवन इसका उदाहरण है। पृष्ठ संख्या 79। वह अलग-अलग गुणों, महत्वपूर्ण पद वाले धनी व्यक्तियों के पास जाती है। हर बार कुछ नया और बहुत कुछ पाने की आशा के साथ, अपने को भरा पूरा महसूस करने की कामना के साथ, लेकिन अंततः उसे सब कुछ अधूरा वही वही लगता है और परिणामतः निराशा और गहरी होती है। बल्कि घर के सदस्यों के प्रति वह हर असफलता के बाद और ज्यादा कटु विद्रोही होती जाती है, क्योंकि व्यक्तियों के नाम अलग-अलग हैं लेकिन वे भिन्न नहीं हैं। एक स्तर पर सब एक से हैं, आधे अधूरे। इन्हीं सब कारणों से इस नाटक को जीवंत सार्थक मुहावरा की संज्ञा देते हुए निर्देशक के रूप में एक दिग्दर्शक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। यह मौजूदा जीवन की विडंबना के कुछ सघन बिंदुओं को रेखांकित करता है। इसके पात्र स्थितियां एवं मनः स्थितियां यथार्थ परक तथा विश्वसनीय हैं। आधे अधूरे आज के जीवन के एक गहन अनुभव खंड को मूर्त करता है। बात कुछ हद तक सही है। सचमुच यह आम आदमी हिंदी नाटक से अलग है। आज के जीवन मानवीय स्थितियों का प्रासंगिक नाटकीय अनुभव है। समकालीन सच्चाई की पहली बार नई तलाश है, लेकिन बहुत से कारण ऐसे भी हैं जो कई कई प्रश्न सामने लाते हैं और नाटक पर गंभीरता से विचार करने को विवश करते हैं। यह प्रतिक्रियाएं बहुत पहले हो चुकी हैं कि हिंदी नाट्य साहित्य और राकेश की नाटक यात्रा का महत्वपूर्ण चरण होते हुए भी आधे अधूरे हिंदी नाटक को बहुत सृजनात्मक स्तर पर या किसी बहुत गहरे अनुभव तक नहीं ले जा सका। यही इसकी कमजोरी है। चाहे किसी स्तर से देखें, संबंधों या चरित्र की बहुत सूक्ष्म और आज के जीवन की बहुत व्यापक पहचान इसमें दिखाई नहीं देती। उदाहरणार्थ महेंद्रनाथ और सावित्री के संबंध को लें। इन दोनों के माध्यम से न तो स्त्री पुरुष या पति पत्नी के संबंधों की, उनके निरंतर के अनुभव से उठते रहने वाले प्रश्नों की गहराई सामने आती हैं और न व्यापक रूप में आज के मनुष्य का संकट, त्रासदी या करुणा। महेंद्रनाथ सावित्री के प्रति क्यों कटु हैं, क्यों झगड़ता है और घर छोड़कर चला जाता है और फिर लौट आता है, इसका कोई गहन अनुभव या कारण नजर नहीं आता। नाटक के अंत में सावित्री के लंबे कथनों से लगता है कि दोस्तों के हाथ की चीज बनकर महेंद्र का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं रह गया। वह दोस्तों के बीच रहने वाला महेंद्र ही बना रहना चाहता है और इसके लिए महेंद्र घर के अंदर रात दिन छटपटाता है, दीवारों से सिर पटकता है, बच्चों को पीटता है और घर आकर बीबी पर हुक्म चलाता है, उसे अपमानित करता है। क्यों तुम लोगों के बीच मेरी पोजीशन खराब करती हो, बीबी को जबरदस्ती अपनी इच्छा अनुसार चलाना चाहता है। वही महेंद्र जो दोस्तों के बीच दब्बू सा बना हल्के हल्के मुस्कुराता है, घर जाकर एक दरिंदा बन जाता है। संदर्भ एक, नटरंग 21, मोहन राकेश के नाटक, निर्देशों की नजर से, पृष्ठ संख्या 19। पृष्ठ संख्या 80। पति पत्नी के बीच झगड़ों, तनाव, मारपीट की बात का संकेत बिन्नी के संवादों में भी मिलता है। आप नहीं जानते हमने इन दोनों के बीच क्या-क्या होते देखा है इस घर में। दूसरी ओर नाटक के आरंभ में कई जगह ऐसा लगता है कि महेंद्र को सावित्री के अन्य पुरुषों से संबंध पसंद नहीं है। मन ही मन जैसे वह उस विरोध से लड़ता रहा हो, क्योंकि सिंघानिया, जगमोहन सबके लिए वह एक तीखेपन के साथ बोलता है। बल्कि पत्नी के बॉस सिंघानिया के आने के समय घर पर ही नहीं रहता। कहने का मतलब यह कि दोनों के बीच टकराहट क्यों है, तनाव के सही कारण क्या है, यह बहुत विश्वसनीय, यथार्थ और गहरे ढंग से स्पष्ट नहीं होता। लगता है तो सिर्फ यही कि दोनों को एक दूसरे की जैसे सही जानकारी न हो और एक गलत फहमी में पड़कर वे निरंतर लड़ते झगड़ते हों, वही जैसे उनकी नियति हो। यह सही है कि बेकार निकम्मे व्यक्ति की, पुरुष की, पति की स्थिति उसकी मनः स्थिति और व्यवहार को बदल देने वाली होगी और कुंठित मन उसके व्यक्तित्व को, व्यवहार को अवश्य प्रभावित करेगा। लेकिन फिर भी आपसी संबंधों की जटिलता उतनी सच्चाई, गहराई से नहीं आ पाई। स्त्री पुरुष या पति पत्नी के बीच उठते गिरते प्रश्नों की तह तक पहुंच पाने की शक्ति, सामर्थ्य दिखाई नहीं देती। जबकि आधुनिक समय में स्त्री पुरुष के बदलते संबंधों को, नितांत बदली हुई जटिल मनः स्थिति को, द्वंद को, उनकी समस्याओं, प्रश्नों को, निरंतर बढ़ते अभाव को अधिक गहराई से, अधिक यथार्थ दृष्टि से उठाने के पूरे अवसर नाटक में मौजूद थे। अगर यह मान ले कि महेंद्रनाथ पर पुरुषों से गलत संबंधों के कारण सावित्री से चिढ़ता और झगड़ता है, तो जाहिर है कि इससे आधे अधूरे का सारा नाटकीय अनुभव और संकुचित और सतही हो जाएगा। यही नहीं, सावित्री के जीवन का सारा द्वंद्व, सख्ती और त्रासदी भी उतनी प्रभावशाली नहीं रह जाएगी। इसीलिए यह कहना गलत न होगा कि आषाढ़ का एक दिन और लहरों के राजहंस में पात्रों का चरित्र चित्रण जितना सूक्ष्म, साफ सुथरा और गहरा एवं सच्चा साबित हुआ है, उतना आधे अधूरे का नहीं। जबकि पात्रों की संख्या अधिक नहीं है और उनके माध्यम से व्यंगों, संकेतों की विविधता भी उतनी नहीं है। जहाँ तक पिन्नी किन्नी और अशोक का संबंध है, वे मनोवैज्ञानिक दृष्टि से सही और प्रभावित करने वाले हैं। विशेषकर किन्नी, जिसके व्यवहार, गतियों, मुद्राओं, हाव-भाव, भाषा, संवाद सब में बिगड़ी हुई 13 वर्ष की लड़की का मनोविज्ञान बड़े ही सार्थक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। उनके द्वारा एक ओर आज की तरुण और किशोर पीढ़ी की स्थिति दिखाई गई है और साथ ही आज के माता पिता की स्थिति भी कि वे अपने ही बच्चों के सामने कितने उधड़े हुए हैं और किस तरह बच्चों की प्रतिक्रियाओं का विरोध आक्रोश का बराबर सामना करते हैं और कुछ भी कर पाने या समझा पाने में असमर्थ हैं। वे श्रृंखलित परिवार के बच्चों के मानसिक विकारों को आज की पीढ़ी के बदलते दृष्टिकोण और मानसिकता को भी राकेश प्रस्तुत कर सके हैं।